हमारे बीच दीदी जी डबल डॉक्टर हैं, तो साकार बाबा और मम्मा की भी आपने खूब पालना ली है और दीदी जी डॉक्टर थे, डिस्पेंसरी तो थी ही, लेकिन जब युवा काल होता है तो युवा काल में अपना निर्णय लेना होता है, तो दीदी जी ने तो अपना लाइफ का निर्णय बाबा का ही बन करके रहना, समर्पित जीवन में रहना, यही निर्णय था। तो वह भी दिन आपको बता दें कि दीदी जी के लौकिक पिताजी ने ही दहेज के रूप में एक सेवा केंद्र बना करके दिया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, जब बाबा मम्मा थे उस समय पर दीदी जी को उनके लौकिक पिताजी ने बना करके दिया, जिससे कई आत्माओं की सेवा हुई। उससे फिर वह बीज था, लेकिन उस बीज के बाद उस बॉम्बे में कई सेवा केंद्र खुले हैं। आप वह बीज हैं, आज वह वृक्ष भी बड़ा हो चुका है, लेकिन साथ साथ बाबा ने ही आपको एक मुरली में कहा था कि निर्मला बच्ची परंतु निर्मल आश्रम की रीति से बाबा याद करते, क्योंकि इनका जीवन ही निर्मल है, इनकी सरलता है, इनकी निर्मलता है, इस आधार से बाबा इन्हें निर्मल आश्रम की रीति से भी पुकारा करते थे। और आप विदेशों के भी, ऑस्ट्रेलिया आदि इत्यादि स्थानों पर भी आप अपनी सेवाएं दी हैं। भारत में तो दिया ही दिया, लेकिन विदेशों में भी कई स्थानों पर आपने सेवाएं दी हैं, साथ साथ वर्तमान समय आप विदेश एवं ज्ञान सरोवर दोनों स्थानों को सुचारू रूप से संभाल रही हैं। ज्ञान सरोवर की आप डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। तो मैं दीदी जी से कहूंगी कि आज का हमारा विषय है बैलेंस शीट ऑफ लाइफ। इस विषय पर हम सभी के आगे अपना विचार रखेंगे, हमें स्पष्ट करेंगे, इससे पूर्व हम थोड़ा 2 मिनट योग भी करेंगे।
जीवन में बैलेंस रहने से ब्लिसफुल लाइफ रहेंगे, आनंदमय जीवन रहेगा और सबकी दुआएं मिलेंगे, ब्लेसिंग मिलेंगे। तो इसलिए बैलेंस रखना जरूरी है। जैसे देखो, कुर्सी के 4 पहिए एक लेवल में नहीं होगा तो क्या होगा, कुर्सी हिलेंगी, जैसे हम हिलेंगे गिर भी जा सकते हैं। तो देखो, संसार में आप लोग रहते हैं तो बाबा ने आज किस बात का बैलेंस रखने का कहा, आज की मुनि में क्या था? हाँ, और कल की मुनि में क्या था? वो कल की मुनि में था, और आज की मुनि में था याद और सेवा का बैलेंस। तो कल की मुरली में न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने का कहा। किससे न्यारा रहना है, कल कितनी बातें बताए, किनसे न्यारा रहना है, मैं और मेरे से और प्रवृत्तियों से। कितने प्रकार की प्रवृत्ति होती है कल कौन सी बताइए, लौकिक परिवार की और सेवा की, और कमजोर संकल्पों की और संस्कारों की और एक रही शरीर की, शरीर की लौकिक संबंधियों की सेवा की, अपने कमजोर संकल्प संस्कार उसकी प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति से न्यारे रहना है। अर्थात फिर बाबा ने कहा ये ना हो मेरा मेरा, प्रवृत्ति तो करनी है, घर में भी रहना है, सेवा भी संभालनी है, परंतु मेरापन ना हो। तो इसलिए लौकिक को क्या करना पड़े, अलौकिक बनाओ, मेरा नहीं, मेरा परिवार नहीं, बाबा के बच्चे। तो ऐसी देखो अपने आप को, चेक करना, अभी आप भट्टी में हो ना, चेक करो हमारा ये कितना रहता है कि मेरा परिवार नहीं बाबा के बच्चे, मेरे बच्चे मेरा पति, ये रहता है। क्योंकि एक है थियरी, दूसरा प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है वो देखना है ना अपने आप में। क्योंकि अपने को धारणा स्वरूप बनना है, सिर्फ ज्ञान स्वरूप नहीं बनना है। नॉलेज की पॉइंट तो सहज है समझने की और समझाने की, परंतु जब उसको धारणा करें तो इसलिए देखना है कि हम अपने लौकिक परिवार को अलौकिक दृष्टि से देखते हैं। और उसी रीत से चलते हैं कि ये बाबा का सब कुछ है। और बाप के प्यारे रहना है, उन्हों के तो प्यारे रहना है लेकिन बाप के प्यारे रहना है। कल बाबा ने विशेष कहा प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के प्यारे। तो हर एक से प्यार भी हो, ऐसे भी नहीं कि हमारा मोह नहीं है, बीमार है तो पड़ा रहे, नहीं, उनकी देखभाल भी करनी है, संभाल भी करनी है, परंतु मोह के वश दुख ना हो, बुद्धि वहां पुल ना हो, योग के समय ये याद ना आए अभी क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं याद आए। कितनी भी चिंता जनक स्थिति हो, चिंता ना हो, क्यों, बाबा जिम्मेवार है, बाबा के बच्चे तो बाबा जिम्मेवार है। तो इसलिए एक तो न्यारा और प्यारा, सब बातों से न्यारा, मेरा जो घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी किताबें हैं, कईयों को छोटी छोटी बातों में मोह होता है, मेरी पेन उसको हाथ में लगाओ, मेरी खटिया उस पर नहीं सोना किसी को, हाँ तो ये मेरा पन ना हो। फिर बैलेंस कौन सा रखना है, लव एंड लॉ, सबके साथ प्यार हो परंतु उनों को और उन्हों से कायदे से चलो और चलाओ। क्या होता है परिवार में है ना, तो विजिट करना होता है लौकिक में, प्यार से बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो समझते बिचारों ने प्यार से इतना अच्छा खाना बनाया है ना, कैसे करें, तो मर्यादा तोड़ देते हैं, या बच्चे हैं उसके साथ बहुत प्यार है तो उसको डिसिप्लिन में नहीं चलाते हैं, जो करता है वो करने दो, रोता है तो रोएगा ना, उसको ऐसा बोलेंगे तो रोएगा, इसलिए बोलते नहीं है, तो ये नहीं कायदे अनुसार। कोई कितना भी प्यार करे लेकिन हमें अपनी मर्यादा कानून तोड़ने नहीं है। फिर बैलेंस ऑफ मीठा रहना है तो साथ साथ स्ट्रिक्ट भी रहना है, स्वीट एंड स्ट्रिक्ट, क्योंकि नहीं जैसे माताएं जरा ज्यादा स्वीट होती है, पिता होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, तो बच्चे क्या करेंगे, माँ के पिछाड़ी उसका सहारा लेंगे। हाँ कुछ भी होता है तो माँ को बताएंगे, गड़बड़ होंगी माँ को बताएंगे, बाप को नहीं बताएंगे कि बाप डांटेगा। तो स्वीट भी रहो तो स्ट्रिक्ट भी रहो, क्योंकि क्या होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रहने से फिर क्या होता है, कभी कभी आजकल के बच्चे क्या हो जाते हैं, और भी सामना करने वाले, रिबेलियस कहते हैं अंग्रेजी में, सामना करेंगे। आप उसको ना कहो तो जरूर करेगा। यहां से तो विदेश में तो बहुत, उसको रात कहो तो कहेगा नहीं दिन है, उसको कहो सफेद कपड़े पहनो कहेगा नहीं लाल कपड़ा पहनूंगा, उसको कहो अभी नहीं जाओ कहा नहीं अभी जाऊंगा मैं। तो क्या है, स्पेशली 16 साल के बाद है उनको थोड़ी लगाम छुट्टी मिल जाती है, घर की चाबी मिल जाती है, तो समझते हैं हम जो चाहे करे, जिसके साथ जाए घूमे फिरे खाए पिए, क्या है माँ बाप को पूछना नहीं। माँ बाप पूछते हैं घर छोड़ के भाग जाते हैं, और कई कई देशों में तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, मतलब जैसे वो अनाथ हो गए, माँ बाप नहीं है, माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, तो गवर्नमेंट उसको हर हफ्ते कुछ देती है, तो वो समझते हैं गवर्नमेंट देंगे। हमारे पास तो कई ऐसी बहनें, माँ अच्छी थी परंतु ज्ञानी थी, तो घर छोड़ के चले गई लड़की, रास्ते पर रहना पसंद करेंगे पर माँ के पास नहीं, क्यों कि माँ पूछती है कहाँ जाती है, कब जाएंगे, क्या करती है, किसके साथ जाती है, आदि आदि। जरा भी हमको बंधन नहीं चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, कि माँ बाप तो कहेंगे ना टाइम पर खाओ स्टडी करो ये करो, स्ट्रीट चिल्ड्रन बन जाते हैं, और गवर्नमेंट देती है हफ्ते हफ्ते खाने पीने को मिल जाता है, रास्ते पर सो जाते हैं, तो इसलिए स्वीट भी रहो, लव भी रहे तो लॉ भी रहे। क्या है कि लव रहने से एक तो ये है, हमने देखा है कि माताओं के प्यार के कारण बच्चे हैं ना विदेश में आते हैं तो माँ कहती है उस अनुसार करते हैं, जैसे गांधी जी ने मैं अपनी कहानी में लिखा ना, कि माँ ने कहा मांस मदिरा नहीं खाना, पर स्त्री गमन नहीं करना, तो माँ ने कहा इसलिए वो पालन किया। इसी रीत से हमारे पास लंदन में एक जवान आया था, जवान वो जवान पढ़ने लिया आया था कैरेबियन से, तो जब हमारे पास कोर्स करने आया तो मैंने उसको पूछा कि तुम परमात्मा में मानते हो? हिंदू धर्म में नहीं मानता हूँ, हिंदू के भगवान को नहीं मानता हूँ, हिंदू बैकग्राउंड का था। मैंने कहा क्यों? कहा मेरी माँ है, कई बार ब्राह्मणों को बुलाती थी और जब तक ब्राह्मण ना आए तो बच्चों को भूखे रखे, ऐसा कैसा धर्म हिंदू। दूसरा कि देखो क्राइस्ट है, कितना कृपालु है कि भेड़ बकरी को कान पर उठाकर जाता है बीमार है तो, और राम देखो हमेशा तीर कमान दिखाता है कि सोने के हिरण के पीछे पड़ा है, तो राम अच्छा या कृष्ण अच्छा? मैंने कहा तुम प्रेयर करते हो? कहा हाँ। मैंने कहा कोई चित्र सामने रखते हो? हाँ। कौन सा? शंकर का। मैंने कहा अभी अभी तुम कहता था कि मैं हिंदू भगवान को नहीं मानते और शंकर का चित्र रखा है। पता मेरी माँ ने, मैं जब यहाँ आता था ये चित्र दिया था, कहा उसके सामने दिया जलाकर नमन वंदन करके कॉलेज में जाना। तो जैसे गांधी जी ने भी लिखा है कि आज हिंदू धर्म क्यों कायम है, माताओं के कारण, क्योंकि करेबियन में चार पांच पीढ़ी से कोई वहां से यहाँ भारत में नहीं आए, परंतु सुरिनाम करके वहां देश है, वहां हिंदी भाषा बोलते हैं, कपड़े सारे बदली किया है, विदेशी कपड़े पहनेंगे, खाने पीने में भी सब कुछ कर लिया है उन्होंने, समझो मांस मच्छी खाना, परंतु रामायण पढ़ेंगे, क्योंकि वहां यूपी बिहार से बहुत गए हैं, रामायण पढ़ेंगे, रामायण की चौपाई याद करेंगे, और सुरिनाम में तो हिंदी भाषा भी बोलते हैं। तो क्या है वहां इतने दूर देश तक भी जो हिंदू है करेबियन में, वो अभी भी हिंदू धर्म पालन करते हैं। क्यों? माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है, बच्चे अपने संस्कार बच्चों को संस्कार देती है, ऐसे चलता रहता है। तो इसीलिए जब माँ प्यार करती है बच्चे को तो बच्चे को होता है जब वापस घर जाऊंगा माँ पूछेंगी पूजा करते हो, रोज नमन करते हो, तो नेचुरली है जवाब देना पड़े। तो इसलिए माँ को खुश करने के लिए भी पूजा पाठ करते हैं। फिर हमको, हमने बाबा के, ब्रह्मा बाबा के जीवन में बहुत बैलेंस लिखा, इकोनॉमी और उदारता। जैसे हमेशा मुरली में कहते हैं कम खर्च बाला नशी, और हम जब बम्बई दिल्ली वगैरह से नहीं, वहां तो यहाँ तो फल नहीं मिलता है, कुछ फल कहाँ से आता है, अहमदाबाद से मुंबई से वगैरह, तो हम लोग फल लाते थे तो बाबा क्या करता था, क्वालिटी देखता था और पूछता था कितने में खरीदा, तो बाबा को दाम मालूम रहता था कि क्या दाम होना चाहिए, तो देखता था कि कोई अच्छे दाम में अच्छा क्वालिटी लाया है तो सर्टिफिकेट देता था अच्छा ग्राहक हो, नहीं तो कहेगा हजाम हो। और दादी भी, जानकी दादी भी अपने क्लासेस में कई बार सुनाती हैं कि शुरू शुरू में तो बेगरी पार्ट था तो बाबा भी कहता था जाओ मालिक के पास जाकर कम दाम में सब खरीद करके आओ। जो भी शॉपिंग करने वाले थे ना, चालू शॉप में नहीं जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, मालिक को मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनसे या तो फ्री मिलेगा या तो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि दुकानों में जाता है कितनों के हाथ में जाता है कितना उसका डबल दाम हो जाता है। तो बाबा हमेशा इकोनॉमी के लिए हमेशा कि हमें समय शक्ति धन सबकी इकोनॉमी करनी, आजकल तो इसके ऊपर भी देते हैं ना, समय का भी इकोनॉमी करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, संकल्प की भी इकोनॉमी करनी है और बोल की भी, जितना चाहिए इतना बोलना है। कल भी कहा ना विस्तार को सार में, तो इकोनॉमी, क्योंकि समय बहुत वैल्यूएबल है, हमारी एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है, धन बहुत वैल्यूएबल है, तो उसको हमें सार्थक करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है, पर साथ साथ उदार। मधुबन में आप देखते हो आज कोई भी आता है भंडारे में क्या भी डालता है मालूम नहीं पड़ता है ना, कई बार तो मालूम नहीं पड़ता है कि आप लोग क्या देते हैं, परंतु आप सबको एक प्रकार की गिफ्ट, आज 20,000 भी आते हैं सबको एक प्रकार की गिफ्ट, उसमें से कितने होते हैं क्या देते हैं मालूम नहीं, कई तो 5 दिन रहकर 100 रुपया देते हैं, खाते हैं पीते हैं स्नान करते हैं कपड़े धोते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है और साथ में सौगात मिलती है। उदारता बाबा की ये शुरू से कि बाबा के पास आए हैं गिफ्ट लेकर जाओ। तो उदार, मैं भी जब पहली बारी बाबा को मिलने आई तो बाबा ने कहा घर में कितने लोग हैं, सबके लिए गिफ्ट दी। फिर बैलेंस बालक और मालिक, मालिक बन के हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं, उसमें हमें सोचना नहीं है बहुत कि हमारे विचार लोग सामने वाले स्वीकार करेंगे या नहीं, परंतु बालक बनकर जो निर्णय हुआ उसको स्वीकार करना है। स्पेशली आजकल क्या होता है, टीम वर्क होता है, एक जन नहीं डिसाइड करता है, 10 जन बैठकर सोचते हैं क्या प्लान बनाना है, कैसे प्लान बनाना है, हर एक अपने विचार देते हैं, तो सबके विचार तो मंजूर नहीं किए जाएंगे, तो अपने विचार दो, परंतु ये नहीं सोचो कि मेरे विचार तो स्वीकार नहीं किया, चलो हम अभी सेवा में सहयोग नहीं देंगे, नहीं। बालक बनकर, आज्ञाकारी बनकर सेवा में साथ दो, सहयोग दो। नेक्स्ट है, नम्र भी रहो और नशा भी हो। जो बाबा, देखो ब्रह्मा बाबा कितना नम्र था, हमको कहता है आपको नमस्ते नहीं करना है, झुकना नहीं है, परंतु वो रोज नमस्ते करता था। और मेजोरिटी टाइम तो ऐसे करके नमस्ते करता था। और कभी भी बाबा है ऐसा नम्र था, ऐसे बाबा और हम लोग एक ही साथ एक ही ठिकाने पर बैठते थे। बाबा के कमरे में आपने देखा है ना, गद्दी कितनी ऊंची है, जस्ट 3 इंच भी नहीं होंगी, और हम लोग सामने बैठते थे हिस्ट्री हॉल में। वही बाबा की गद्दी पर बाबा मुरली चलाता था, हम लोग जो क्लास कराते थे उसी पर कराते थे। तो इसलिए ऐसे नहीं कि बाबा की गद्दी पर कोई बैठेगा नहीं। आप लोगों ने सन्यासियों का देखा होगा ना, सन्यासियों का देखो कितना वो होता है भपका, जहां भी जाते हैं ना शंकराचार्य का, उसका चांदी का सिंहासन पहले जाएगा, गद्दी पर बैठेगा ना चांदी के सिंहासन पर, और उसके 8-10 पंखा चलाने वाले होंगे आगे पीछे। और जब कथा करने जाएंगे ना सन्यासी, कितनी कार में जाएंगे, उसके कितने फॉलोअर्स होंगे। और हर फॉलोअर्स को, यदि कथा में आते हैं तो हर फॉलोअर्स बैठकर आजू बाजू मंत्र बोलेंगे, कुछ करेंगे, पूजा करेंगे, सबको दक्षिणा दो। और कई कथावाचक तो अपना फिक्स रेट कि हमारा इतना खर्चा होगा, आपको करा दी है तो कराओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बाबा तो है, उसने ना अपने ड्रेस बदला, ना कोई अपनी विशेष गद्दी रखी, ना तो हम लोग जब वो आते थे ना ट्रेन में ही मुसाफरी की है, बाबा ने कभी प्लेन में मुसाफरी नहीं की है। तो स्टेशन पर आते थे तो कहते बहुत क्राउड नहीं है, इकट्ठा करो, थोड़े आओ, बाबा गुप्त है, गुप्त रहना। और कभी कहता था हार तोरा फूल ये नहीं चाहिए, हम कोई देवता थोड़ी बने हैं, तो इसलिए स्वीकार नहीं करता था कि हम सत्युग में देवता बनेंगे, तब हमको सब हार चढ़ाएंगे। तो इसलिए बहुत नम्र था, परंतु नशा कितना था, कल जाकर मैं नारायण बनूंगा। जब लच्छू भी उसकी सेवा करती थी ना, तो बाबा का ड्रेस देती थी तो कहती कल जाकर मैं ये नारायण का ड्रेस पहनूंगा। हिस्ट्री हॉल में भी मुरली सुनाते सुनाते कल जाकर मैं ये बनूंगा। और मैं बाबा का एक सचिलदा बच्चा हूं, तो नशा रहता था, तो ये देखना है कि हमें भी नशा रहे कि हम कल जाकर क्या बनेंगे, किसके बच्चे हैं, किसकी संतान है। और साथ साथ नम्र रहना है, सबको सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है। फिर बैलेंस लौकिक और अलौकिक का हो। लौकिक भी निभाना है, परंतु उसके कारण हमारी पढ़ाई ना छूटे। और बाबा कहते हैं ना कि 8 घंटा सेवा करो, 8 घंटा घर काम करो, 8 घंटा शरीर को दो। तो शरीर को भी संभालना है, परिवार को भी संभालना है, तो अपनी पढ़ाई भी करनी है। और शाम के समय टाइम मिला या दिन में टाइम मिला तो सेवा भी करनी है। सारा दिन घर काम में बिजी नहीं रहना। और विदेश में तो सेवा बांट देते हैं, क्योंकि माताएं भी काम करती है, भाई भी काम करते हैं, तो माताएं आकर खाना पकाएंगी, पति को बर्तन मांजने का, बच्चों को पहुंचने का, बर्तन पहुंचने का, फिर बच्चों को भी ड्यूटी, कभी घर साफ करना है तो वहां तो हुवर होता है ना, तो उससे साफ करना होता है, तो बच्चों की भी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, दूध लाना है, कचरा फेंकना है, सब ड्यूटी बांट देते हैं, किसको शॉपिंग करनी है, पति आएगा शॉपिंग करके लेके आएगा, तब तक माता के घर में खाना पकाएंगे, तो इसी से ड्यूटी बांट देनी। ऐसे नहीं कि हम सारी जिंदगी बच्चों का सब कुछ करती आई तो करती आई, बच्चे बड़े हुए तो वो भी थोड़ी जिम्मेवार। क्या इंडिया में तो क्या होता है, समझते बच्चे माना पढ़ाई करे पढ़ाई करे, तो बच्चों को लड़कियों को भी काम करने नहीं देंगे। फिर क्या होता है, लड़कियां ससुराल जाती है, सेंटर पर जाती है, उसे काम नहीं होता है। तो इसलिए सबको सब कुछ करना है, क्योंकि हम लौकिक में थी, लौकिक ज्ञान में नहीं थे। परंतु क्या होता था, कई बार हमारे पास खाना पकाने वाली भी थी पर वो 4 दिन मास में नहीं आती है, तो हम बहने काम करते थे, हमारे घर में 13 जने का खाना था, और हमारे नौकर है ना, 2 भाई थे, 11-11 रोटी खाएंगे। काम करते हैं, मजबूत है तो 11-11 रोटी खाते हैं, तो इतना खाना पकाते थे हम, पढ़ाई भी पढ़ते थे। तो इसी रीत से क्या है कि ये बैलेंस होना चाहिए कि उन्होंने भी कुछ मदद लेनी है, नहीं तो हम करते रहेंगे तो वो तो समझेंगे अच्छा ही है, आप घर में बैठे हो करते रहो, और विदेश में तो क्या करते हैं कि
आपके लड़के वगैरह जाएंगे, लड़की लड़का विदेश में जाएंगे, शादी के बाद बच्चे पैदा होंगे, माँ को बुलाएंगे कि आप अभी बच्चों को संभालो, हम दोनों नौकरी करेंगे। तो कई माताएं बिचारी भोली भाली होती है, चली जाती है, फिर विदेश में तो पढ़ाई रुक जाती है। क्यों? सेंटर दूर, ड्राइविंग करना तो आता नहीं माताओं के, तो जब तक बच्चे ना ले जाए तो जा नहीं सकते। वो भी संडे संडे जाएंगे, वो भी यदि बच्चे उठकर सवेरे उठकर क्लास में ले जाए तो। तो इसलिए ये देखना है, बैलेंस रखो, लौकिक भी संभालो। बैलेंस, शरीर का भान भी रखना है तो आत्मा की भी संभाल करनी है। क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कई लोग है यहां भी, हमने इंडिया में देखा है, 11 साढ़े 11 तक सोते नहीं, फिर 4 बजे उठना कहां से होगा। विदेश में तो क्या होता है कि सवेरे उठा, क्लास में गए ना गए, नाश्ता किया, खाना में ना पकाया, भागे काम पर, आए खाना पीना पकाया, ये किया हो किया, और अकेले होंगे तो भी क्या करेंगे, दिन में एक बारी खाना पकाएंगे, और वो भी कभी पूरा पकाएंगे कभी नहीं पकाएंगे। तो इसलिए हम विदेश में तो खास कहते हैं कि कम से कम एक बारी अच्छा खाना पकाओ, बैलेंस खाना भी बैलेंस चाहिए ना, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, और सलाद भी चाहिए, नहीं तो वो लोग तो सैंडविच खा लेंगे, एप्पल खा लेंगे, और टीन का फूड होगा, बीन्स वगैरह, वो आके गरम करके छौंक लगा के मसाला डाल के खा लेंगे। तो हम कहेंगे नहीं, कम से कम एक टाइम अच्छा खाना पकाओ, बल 3 टाइम खाओ या 2 टाइम खाओ, क्योंकि कई नौकरी करते हैं तो नौकरी पर सैंडविच ले जाएंगे या एप्पल ले जाएंगे आदि आदि। तो शरीर की भी संभाल करनी है, 6 घंटा आराम देना है, रात को 6 घंटा तो आराम चाहिए। आज 11 बजे सो और 3:30 बजे उठो तो कितना घंटा हुआ, 4-4.5 घंटा भी नहीं हुआ। तो माताओं को तो फिर भी टाइम मिलता है, दिन में कभी काम नहीं करते तो सो जाते हैं, पर भाइयों को नौकरी धंधे में टाइम नहीं मिलता है। तो ये देखना है कम से कम 6 घंटा हो, ताकि अपनी नौकरी पर भी स्फूर्ति रहे, नहीं तो क्या होता है नौकरी वाले भी सेठ भी डांटेंगे कि यहाँ पगार लेते हैं सोने के लिए, क्या सवेरे उठ के भागते हो बाबा माँ कुमारियों के पास और यहाँ कर सोते हो क्या, तो ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी बदनाम होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अपना बैलेंस हो। स्व सेवा और अन्य की सेवा का बैलेंस हो। क्योंकि कई बार अन्य की सेवा के लिए हम बहुत दौड़ भाग करते हैं। रात को देरी देरी से आते हैं, सेवा करके प्रोग्राम करके अमृत वेला मिस हो गया या मुरली मिस हो गई, तो ये तो ठीक नहीं ना। अपनी भी सेवा करनी है, देखना है अपना अमृत वेला मुरली ठीक हो, शाम का भी योग हो, और औरों की सेवा भी करो जरूर। क्योंकि हम सन्यासी तो नहीं है जो अपनी ही उन्नति का अपना ही योग करके बैठे रहें, औरों को भी संदेश देना है, अपना भाग्य बनाना है, उनका भी भाग्य बनाना है, इसलिए देखना है उन्हों की भी सेवा जरूर करो, पर अपनी सेवा निग्लेक्ट नहीं करो। तो एक तरफ हमें जिम्मेवार रहना है, तो दूसरी तरफ ये हमारे में बुद्धि में भान हो, हम निमित्त हैं। बाबा करण करावन हारा, परंतु इसलिए ऐसे नहीं कि बाबा कराएगा और हम बैठे रहें, या कई बार क्या होता है अपनी जिम्मेवारी समझकर हम भारी हो जाते हैं, मुझे करना है, मेरा मेरी ये जिम्मेवारी है, तो हम भारी हो जाते हैं। परंतु जिम्मेवारी से काम करना है, जो काम मिला है सेवा मिली है जिम्मेवारी से करनी है, परंतु साथ साथ ये हमेशा बुद्धि में रहे मैं निमित्त हूं। इसलिए हमने देखा है ना, दादी प्रकाशमणि को आप कितनों ने देखा है, जरा हाथ उठाना, काफी ने देखा है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी थी सारे यज्ञ को चलाने की, पर कितनी हल्की रहती थी और हर्षित, हमेशा हल्का है तो हर्षित रहेंगे ना, भारी होगा तो चेहरा भी भारी हो जाएगा, हमेशा हंसती थी। फिर हम पूछते थे, दादी इतनी जिम्मेवारी आप क्यों हंसती, इतना लाइट है, तो दादी कहे मैं तो निमित्त हूं। दादी पथारी में सोती थी, एक मिनट में नींद आ जाती थी, नहीं तो कोई जिम्मेवार होते हैं ना चिंता हो जाती है, नींद नहीं आती है, पर नींद भी जल्दी आ जाती थी, हर्षित भी रहती थी, और हमेशा रोज रात को बाबा को कहती थी, थैंक्स बाबा आज का दिन अच्छा रहा। तो समझो हमें भी जिम्मेवार भी रहना है तो हल्का भी रहना है, बिजी भी रहना है तो इजी भी रहना है, बैलेंस हो बिजी और इजी का। क्योंकि समय थोड़ा है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी बाबा ने दी है, तो बिजी रहना है, चाहे नौकरी धंधा करे या ना करे, परंतु पढ़ाई है, योग है, घर काम है, नौकरी धंधा है, सब में बिजी तो रहते हैं ना, परंतु इजी रहना है, हल्का रहना है। नहीं तो कई बार क्या है, बिजी लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, दौड़ भाग करते हैं ना, तो टेंशन में आ जाते हैं, या बिजी लोग है फिर औरों की तरफ नजर भी नहीं रखेंगे, नजर भी नहीं डालेंगे, कौन आया कौन गया, सब ठीक है या नहीं आदि आदि। क्योंकि विशेष सेंटरों में जो रहते हैं विदेश में, तो हमने देखा है नौकरी भी करते हैं सवेरे क्लास कराना, शाम को आके क्लास कराना, और फिर कम्युनिकेशन भी करना, कंप्यूटर से ऑफिस का काम करना, पत्र लिखना, पत्र का जवाब देना आदि आदि। तो बहुत बिजी रहते हैं, परंतु हम उन लोगों को कहते हैं भल बिजी रहो, परंतु जो सेंटर पर आते हैं उनसे तो बातचीत करो, हाल चाल पूछो, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, मुरली सुनाए या तो ऑफिस के लिए भागे अपने नौकरी के लिए, या तो ऑफिस में कंप्यूटर पर काम होता है उस पर भागे, तो मुरली में आने वालों से भी हेलो करने का टाइम नहीं मिलता है। तो नेचुरली है स्टूडेंट समझेंगे कि परिवार की वासना नहीं आती है। देखो यहाँ दादी जी क्या करती थी, हमेशा मूली के बाद आंगन में बैठ जाती थी, तो जो भी आता जाता था ओम शांति करते जाते थे, तो दादी फील होता था कि हाँ दादी हमको रिस्पॉन्ड करती है। और दादी के पास हम कभी भी जाते थे, दादी को पूछते थे दादी हमको मिलना है, चलो आ जाओ, बुला लेती थी। तो बिजी भी रहती थी परंतु हल्की भी रहती थी, इजी भी रहती थी। तो इसीलिए हमें देखना है कि हमें ब्राह्मण जीवन में बैलेंस में रहना है, तो हम हर्षित रहेंगे और हमारी जो योगियों की आनंदमय स्थिति है ब्लिसफुल वो भी रहेंगे, और सबकी दुआएं भी मिलती रहेंगी। क्योंकि आगे बढ़ने का हमारा साधन क्या है, अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन औरों की दुआएं भी हमें पुरुषार्थ में आगे जाने में बहुत मदद करती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम स्पीड से आगे जा रहे हों, बैलेंस होगा तो स्पीड से जाएंगे, तीव्र पुरुषार्थ हो सकेगा, नहीं तो हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। जैसे कार के पहिए में यदि प्रेशर आगे पीछे होगा तो क्या होगा, कार खड़ी हो जाएंगी ना। एक पहिए में भी यदि ठीक नहीं है प्रेशर तो कार आगे नहीं जा सकती है। तो इसलिए हमें भी अपनी ये ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए बैलेंस रखना जरूरी है। उसमें भी खास परिवार में रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो इसलिए देखना है कि अपनी प्रवृत्ति में फिर हम अपनी ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ, गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना हमारी, तो ये भूले नहीं कि हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में रहेंगे।
खेलूं उन्हीं संग बैठूं।
ओम शांति। दीदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि दीदी ने बैलेंस बहुत अच्छी तरह से और गुणों को शक्तियों को लेते हुए हम सभी को स्पष्ट किया।